नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों के हमले में फिलीपींस जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने के बाद लापता 6 मजदूरों को मृत घोषित किया गया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी मियामी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को 63 रनों से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, जबकि बिहार में नामांकन पत्र कल तक दाखिल किए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे।
इस चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जाँच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में नामांकन पत्रों की जाँच 30 मार्च को की जाएगी और 2 अप्रैल तक नाम वापस किए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
राजस्थान में पहले चरण में कुल 40 उम्मीदवारों ने 12 सीटों पर नामांकन पत्र भरे हैं। जयपुर लोकसभा सीट पर अधिकतम 10 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवारों के बड़ी संख्या में नामांकन भरने की संभावना है।
अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव तथा बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। दूसरी ओर पहले चरण के लिए कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशियों की ओर से आज पर्चे भरे जाएंगे। प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि भीलवाड़ा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। दूसरी ओर कांग्रेस 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। पार्टी ने सीकर और नागौर सीट अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी है, जबकि बांसवाड़ा सीट पर अभी उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने राजस्थान में दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटो को उम्मीदवार बनाया है। थौना ओजम बसंत कुमार सिंह आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। उधर कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ सीट से डॉ मेनका देवी सिंह, बिलासपुर सीट से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर सीट से वीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। आर सुधा तमिलनाडु के मयिलाधुथुराई से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कल नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। श्री यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के तहत भाजपा ने सभी 17 और जनता दल यूनाइटेड ने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़ितों में से एक से फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया। श्री मोदी ने उनसे लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों पर चर्चा की। मिजोरम में लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट जीतने के लिए मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। एक सीट के लिए कई उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने रिचर्ड वान लाल हमंगइहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट ने वर्तमान राज्यसभा सदस्य के वनलाल वेना को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिजोरम भाजपा अध्यक्ष वन लाल हुमुआका को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व एमपीएस अधिकारी लाल बाइक जमा को उम्मीदवार घोषित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी महिला उम्मीदवार रीता मालस्वामी को प्रत्याशी बनाएगी।
राज्य चुनाव विभाग आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। राज्य भर के 1276 मतदान केंद्रों पर कुल 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। राज्य पुलिस बल के 3000 से अधिक कर्मियों के अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की लगभग 15 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी मधु व्यास ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनता से सुचारू और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सक्रिय भागीदारी और सहयोग की अपील की जाएगी।
आई वुड लाइक टू सी एंड रिक्वेस्ट एक्टिव एंड कंटिन्यू कोऑपरेशन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप फ्रॉम ऑल एस्टीम्ड स्टेक होल्डर्स स्पेशली फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ मिजोरम। लेट अस ऑल ट्राई टू चैनलाइज आवर एनर्जी टुवर्ड्स अचीविंग अ स्मूथ फ्री फेयर पीसफुल एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस विद ऑल टाइम हाईएस्ट वोटर टर्नआउट।
आइजोल से जिन गांगटे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बढ़ती गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी किया है। ये परामर्श मौसम विभाग के इस वर्ष मार्च से जून के दौरान सामान्य से अधिक तापमान के पूर्वानुमान के बाद जारी किया गया है। आयोग ने गर्मी के प्रभाव को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों को साझा किया है। एक रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान दलों और मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर ORS मुहैया कराया जाए, ताकि ये लोग गर्मी के मौसम में लू से खुद को बचा सकें। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीने के पानी के लिए नल की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही पेयजल के बर्तनों की पर्याप्त व्यवस्था भी करने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों के अंदर टेबल, कुर्सी और बेंच की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुष और महिला मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में अलग अलग शौचालय होने चाहिए। साथ ही लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए टेंट की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाताओं और मतदान कर्मचारियों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था हो और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती मतदान केंद्रों पर की जाए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कल मतदाता शिक्षा और मतदाताओं की भागीदारी के कार्यक्रम में चुनाव क्षेत्र के स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य सीमांत जिले में महिला मतदाताओं को लक्ष्य बनाकर उनमें उत्साहपूर्वक भागीदारी की भावना विकसित करना है। इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुपवाड़ा विधानसभा के इलाके में महिलाओं की भागीदारी की सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने सराहना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्निंड आर मार्कोस जूनियर ने इस महीने अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों के हमले में एक व्यापारिक जहाज पर सवार फिलीपींस के चालक दल के सदस्यों को बचाने में भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। अदन की खाड़ी में 6 मार्च को व्यापारिक जहाज एमवी कॉन्फिडेंस के हूती विद्रोहियों की मिसाइल की चपेट में आने के बाद भारतीय नौसेना की मेडिकल टीम ने चालक दल के सदस्यों को बचाकर उनकी देखभाल की थी। इस हमले में फिलीपींस के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। श्री मार्कोस ने फिलीपींस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के प्रति आभार व्यक्त किया। अमेरिका के मैरीलैंड में पुलिस ने कहा है कि बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की पुल के गिरने के बाद लापता हुए 6 लोगों को मृत मान लिया गया है। एक मालवाहक जहाज ने फ्रांसिस स्कॉट की पुल को कल टक्कर मार दी थी, जिससे पुल ध्वस्त होकर नदी में गिर गया था। अधिकारियों ने कहा कि कम तापमान और दुर्घटना के बाद काफी समय बीत जाने के कारण लापता लोगों को मृत मान लिया गया है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब सिंगापुर के ध्वज वाला डेली मालवाहक जहाज बाल्टीमोर के बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो के लिए रवाना हो रहा था कि अचानक ये नियंत्रण से बाहर हो गया और फ्रांसिस स्कॉट की पुल के एक खंभे से टकरा गया। जहाज के चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय नागरिक थे। बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बचा लिया था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की विश्व की नंबर एक जोड़ी मियामी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स में सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के सेम वर्बीक और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ को 3-4, 7-5, 10-7 से हराया। पहला गेम हारने के बाद भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने शानदार वापसी की। और आईपीएल क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 63 रन से हरा दिया है। चेन्नई के एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमंत स्वामी स्मरणानंद महाराज का कल रात कोलकाता के रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान अस्पताल में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। स्वामी स्मरणानंद महाराज के पार्थिव शरीर को आज सुबह से शाम 8 बजे के बीच आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए बेलूर मठ में रखा जाएगा। उसके बाद बेलूर मठ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीमंत स्वामी स्मरणानंद महाराज के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 मार्च तक वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद देवेंद्र। केजरीवाल के हिरासत से सरकार चलाने के बयान पर अधिकांश अखबारों में विशेष टिप्पणियां हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, केजरीवाल का ईडी हिरासत से एक और आदेश। विशेषज्ञ बोले, हिरासत में रहकर सीएम नहीं ले सकते कैबिनेट की बैठक। जनसत्ता ने भी इसे मुख्य खबर बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर उपराज्यपाल से शिकायत। अरविंद की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, रिमांड से चल रही दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल ने फिर जारी किए आदेश, रोक के लिए फिर हाईकोर्ट में याचिका। हिरासत से फरमान पर सियासी घमासान हिंदुस्तान में है। पत्र ने बॉक्स में दिया है, के कविता को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा। दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर खबर दी है, आतंकी पन्नू का दावा, केजरीवाल को दिए 134 करोड़ रूपये। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें लगभग सभी अखबारों में विस्तार से हैं। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, अकाली दल से गठबंधन नहीं, पंजाब में भाजपा एकला चलो। सांसदों का टिकट काटने में भाजपा ने किया शतक पार, बड़बोले और अलोकप्रिय 103 माननीयों पर गाज, अमर उजाला में है। पत्र ने तेजस्वी का बयान, राजद कांग्रेस साथ रहेंगे, पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, बीजेपी के 405 उम्मीदवारों में 16% महिलाएं। अखबार ने एक अन्य खबर दी है, वरुण को कांग्रेस से न्योता, अधीर बोले गांधी परिवार से नाता, इसलिए बीजेपी ने काटा टिकट। दिशा निर्देशों के उल्लंघन मामले में यूट्यूब ने भारत में 22 लाख से अधिक वीडियो हटाए, हिंदुस्तान में है। एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी बनी मुंबई, नवभारत टाइम्स ने दिया है। पत्र लिखता है, 1000 करोड़ वाले बढ़े। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, जम्मू कश्मीर से फसपा हटाने पर होगा विचार, सितंबर के अंत तक चुनाव की गारंटी। शाह ने कहा, प्रदेश में सुरक्षा बलों की तैनाती योजनाबद्ध तरीके से घटाने की कार्य योजना तैयार। पाकिस्तान में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले, 5 चीनी इंजीनियरों की मौत, दैनिक भास्कर के विदेश देश पन्ने पर है। वीर अर्जुन ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हवाले से लिखा है, अरूणाचल पर चीन के दावे का सख्ती से खंडन करे सरकार।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को गर्मी के मद्देनजर परामर्श जारी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमले में फिलीपींस जहाज के चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने के बाद लापता 6 मजदूरों को मृत घोषित किया गया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी मियामी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 63 रनों से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।